श्रीमद् भागवतम 10:20:15 डेट 10 मार्च 2015 स्पीकर आदि प्रभु।
भगवान में लीन मनोबले भक्तगण सभी प्रकार के संकोटों से प्रहार किए जाने पर भी शांत बने रहते हैं। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जलवायु बादलों द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर भी पर्वतगण तनिक भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य, पर्वतगण मुसलधारा वर्षा होने पर तनिक भी विचलित नहीं होते, प्रतियुत उनकी धूल छूट जाती है और वो सुंदर तथा दीप्तिमान लगने लगते हैं। इसी प्रकार भगवान का उच्च भक्त विषम परिस्थितियों में भी अपने भक्ति संबंधी कार्यों से चलायमान नहीं होता, प्रतियुत इससे इस जगत की अनुरक्ति रूपी उसके हृदय की धूल साफ हो जाती है। इस तरह कठिन परिस्थितियों को सहन करने से भक्त सुंदर तथा प्रकाशमान लगने लगता है। वस्तुतः एक भक्त जीवन की सारी पराजयों को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है और सारे कष्टों को अपने पूर्व दुष्कर्म का फल मानता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरो निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगन ललिता श्रीविशाखानितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी एक भक्त की जो ये भौतिक जगत में रहते हुए ये भौतिक जगत की जो सारे प्रकार के कष्ट है, ये भौतिक जगत में जब तक हमें रहेंगे कुछ ना कुछ हमें कष्ट सहन करना पड़ेगा, होते रहेगा, ये नहीं छूटेगा, वो अंत समय तक वो लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ये हो जाए मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कि मैं भक्त बन गया कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, ऐसा बात नहीं है। भक्तों के जीवन में ज़्यादा करके दुख आती है, क्यों ना उनको उन्होंने एक उल्टा चलते हैं और उल्टा चलने वाले व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ दुख होते रहता है। जिस प्रकार नदी अनुकूल से बहे तो आसानी से उनका धारा चलती है, लेकिन नदी के प्रतिकूल में कोई चले तो उठना मुश्किल होती है। ठीक उसी प्रकार भक्तों का जो लड़ाई है, ये भौतिक जगत में जो संग्राम करते हैं, तो भगवत धाम की जो यात्रा है वो लोगों का ये भौतिक जगत का एकदम से विपरीत है, इसलिए उनको अनेक प्रकार की कष्ट के सम्मुखीन होना पड़ता है। लेकिन ये सम्मुखीन को ये बहुत बड़ा भारी रूप में नहीं लेते हैं, बड़े आसान से झेल लेते, क्यों ना उनको एक चस्का लगा है। भगवान का भक्ति का जो आनंद है ये भौतिक जगत की कष्ट उनके सामने तुच्छ है, तो इसीलिए भक्त ये भक्ति जगत में कोई प्रकार की परेशानियों का परवाह नहीं करता, तो सारे प्रकार के कष्टों को बड़े ही खलखल में ले लेता है, बड़े हल्का से लेता है ना। उसको एक प्रकार का शक्ति मिला है, जो शक्ति उनको सहन कर, श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की, तो उनके भीतर ऐसे की शक्ति है, वो सहन कर लेता है। भौतिक जगत में विशेष तो दिखा जाता है कि छोटी छोटी बात तो सहन नहीं होती है, हाँ झगड़ लेते हैं, लेकिन भक्त ऐसे रहता है कि जो उनको कुछ नहीं हुआ, सारा संसार उनको टूट पड़ा है, उनके कोई दोष न होने पर भी सारे दोष उनके सर के प्रति थोपा जाता है, फिर भी वो विचलित नहीं होता, वो जानता है मेरा लक्ष्य क्या है और ये लक्ष्य ये जगह में प्राप्त होगा। भारत ऐसे की जगह है जो भूमि में मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले से बताएं, चैतन्य चरितामृत में भारत भूमि ते होइते जन्म जार, जन्म सार्थक हो जाएगा, जो भारत में जन्म लिया उनका जन्म सार्थक हो जाएगा। हाँ, और इस यहीं पर जन्म सार्थक हो, इंग्लैंड में, अमेरिका, लंदन में नहीं, लेकिन अल्प बुद्धि होने के कारण हम उधर उधर भटकते हैं, भागते हैं। क्यों ना चप्पल सुख लबल आ गिरे, जब तक ये संसार के क्षणिक सुख में हमें मोहित हैं, ऊंची लक्ष्य के भी समय में गंभीर नहीं है, तो फिर हमें डगमगाते रहेंगे। ये भौतिक संसार के सुख हमें उसके तरफ खींचेगा, ये भौतिक संसार की जो आकर्षण है ये बहुत बड़ा भयंकर अंधेरा है, और अंधेरा में कोई व्यक्ति चले जाए तो कुछ देख नहीं पाएगा। तो ये भौतिक संसार के जो आकर्षण है ये अंधेरा के मापी है, और ये आकर्षण में जब कोई व्यक्ति आकर्षित हो जाता है तो फिर उनको सच्चाई दिखाई नहीं पड़ता। तो श्री सुखदेव गोस्वामी आज यहाँ पर यही बात बताना चाहते हैं, अदोख्य जो चेतस, लेकिन जिसका चेतना अदोख्यज में है, तो स्थिर है भगवान का भक्ति में जो लोग स्थिर है, तो वो लोग ये संसार में डगमगाते नहीं है, और एकदम खंबे दृढ़ बनते, क्यों पक्के बन जाते हैं, दृढ़ अदोख्य जो चेतस। सुखदेव गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं, अदोख्य जो चेतस, जिनके मति अदोख्य जी में लग गया, तो फिर उनका क्या, उनको ये संसार की कोई, चाहे गृहस्थ हो या कोई भी हो, वो अटके रुकेगा नहीं, वो अपने लक्ष्य में, लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। तो और कह रहे हैं कि अभिभूय मानव व्यसन, आज के प्रसंग से ये बात पता चल जाती है, ये भौतिक संसार जो है कष्टमय है, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो सुखी नहीं हो पाओगे, पहले समय बताया गया है दुखालयम। इसीलिए एक जीव को यहाँ पर अनेक प्रकार की कष्ट दिया जाती है, वो कुछ समझे ये जगह बराबर नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, सही नहीं है, लेकिन अल्प बुद्धि होने के कारण हमें समस्त प्रकार के कष्ट को सहन करते हुए तो हमें क्या करते हैं, हमें सुखी रहने के लिए प्रयास करते हैं, सुखी बने रहने के लिए अनेक प्रकार की योजना बनाते हैं। यत ओयंग धर्मनंदन पितामह भीष्म कहते हैं पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को और उनके भाइयों को, यत ओयंग धर्मनंदन, आप लोग साक्षात धर्म के पुत्र हो, लेकिन इतने होने पर भी क्या हुआ आपके जीवन में, क्या हो गया, क्या सब हो गया है, ओहो कष्टम ओहो अन्यायम। कुरुक्षेत्र युद्ध जो लड़ा गया था अन्याय के विरुद्ध में, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था इसके वजह से, पितामह भीष्म कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, ओहो कष्टम, आप साक्षात धर्म के पुत्र हो, लेकिन कितने ये क्या हुआ, ओहो कष्टम ओहो अन्यायम, कितने कष्ट आप लोगों को सहन नहीं करना पड़ा, करना नहीं पड़ा, कितना कितना अन्याय आप लोगों के ऊपर नहीं हुआ, कोई नहीं जीवित रह सकता, न तुम क्या यत ओयंग न जीवितुम, इस प्रकार का परिस्थिति में कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन आप लोग जीवित रहे, क्यों ना आप लोग विप्र धर्म अच्युत आश्रय, आप लोगों ने कहाँ आश्रय लिए हो, विप्र धर्म अच्युत। जब तक एक जीव ये तीनों जगह में आश्रय ले रखा है, तो उनको हाँ कोई निराशा होना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ब्राह्मण का आश्रय लिया, धर्म का आश्रय लिया और अच्युत का आश्रय लिया, तो फिर उनको कोई निराशा नहीं होना चाहिए, उनको कोई कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण में इतनी शक्ति होती है उनका आश्रित को, वो भगवान को दे देते हैं, फिर उनको और कोई कठिनाई से मुक्त करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए पितामह भीष्म कह रहे हैं विप्र धर्म अच्युत आश्रय। लेकिन ये संसार की माया इतने प्रबल है, एक मलभक की स्वर भी अपने जगह में मैं बहुत बड़ा सुख में हूं। ये संसार की जो माया है हमें छोटी से छोटी बात भी समझने नहीं देती है। हमें जानते हैं ये संसार क्षणिक है, इंद्रिय तृप्ति बहुत कष्ट 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 की बातें हैं, एक दिन मरना है, ये सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है। लेकिन माया इतने प्रबल है, ये छोटी सी बात को हमको समझने में नहीं देती है। ये संसार की माया है। बातों में ना महाभारत में कथा आती है, जब पांडव लोग बहुत दुख में थे और उनके लिए एक शर्त रखा गया था, आप लोगों को कुछ समय के लिए अज्ञात में रहना पड़ेगा, और विराट महाराज के और पांडवों को भी मार्कंडेय मुनि अनेक ऋषि लोग ने उन वो लोगों को आशीर्वाद भी दिए थे, वो लोगों को आशीर्वाद भी दिए थे, जाओ तुम विराट महाराज के वहाँ पर छुप के रहो, तुम लोगों को कोई नहीं पहचान पाएगा, कि मार्कंडेय मुनि का आशीर्वाद थी वो लोगों के ऊपर। वो गए और जब पांडव लोग कुआं पर छिप करके रह रहे थे, ठीक उसी समय कौरव लोग विराट महाराज के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिए, और आक्रमण करके विराट महाराज के जितने गो संपत्ति थी वो सब छीन करके लेके चले गए। जब पता चला विराट महाराज के पुत्र उत्तर को, तो वो पीछा किए, और जो पीछा करने जा रहे थे वहाँ पर खड़े थे सौरेंद्री द्रौपदी जो छुप करके थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहने लगे विराट महाराज के पुत्र को, देखो आप जा रहे हो कौरव के साथ लड़ने के लिए, एक काम करना, आपके राजमहल में जो डांस मास्टर है, जो राजपुर के अंतवासी स्त्रियां हैं, उस स्त्रियों को जो नाच सिखाते हैं, क्योंकि अर्जुन को उसके पहले कुछ समय के लिए ना पुरुष है ना स्त्री है, ऐसे वेश में कुछ समय के लिए रहने के लिए ऐसे कुछ बात हुआ था उनके ऊपर, तो उस समय वो वहाँ पर ऐसे अवस्था में रह रहे थे, तो सौरेंद्री ने कह दिए कि आप जा रहे हो ना कौरव के साथ लड़ने के लिए, तो एक काम कीजिए, यदि आप ये बृहत नला को आपका सारथी बना लोगे तो युद्ध में आपका जीत होगा। तो हाँ, विराट महाराज के पुत्र उत्तर वहाँ पर बृहत नला को अपने रथ का सारथी बना लिया, और जाके जब पहुँचे उत्तर ने कौरव लोगों के सेना के पास, वो देख करके बोल दिए ये बृहत नला को जो अर्जुन के रूप में थे, बृहत नला को बोले बस वो सारथी अभी ये जो रथ है मेरे राज्य को ले लो। ये कौरवों के पक्ष में इतने बड़े बड़े सेना है, लोग है, कर्ण है, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पितामह, भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ये लोगों का सामना करना मेरे लिए दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आप मेरा रथ को राज्य को ले लो। उस समय बृहद नला बोल रहे हैं क्षत्रिय के लिए सही बात नहीं है, क्षत्रिय के लिए धर्म क्या है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते समय अपने शरीर को छोड़ दे, ये क्षत्रियों का उचित धर्म, तो आप युद्ध कीजिए। लेकिन बार बार उत्तर विराट महाराज के पुत्र बार बार मना कर रहे थे, नहीं मेरे से ये लड़ा नहीं जाएगा। तब फिर अर्जुन ने प्रस्तुत हुए कि आप चिंता नहीं करो, सारथी का भी एक कर्तव्य होता है अपने रथी को विजय दिलाना, तो मुझे आप अनुमति दीजिए, मैं कौरव के सेना के विरुद्ध में लड़ूंगा। और फिर अर्जुन ने युद्ध करते हैं, तभी जीत होती है विराट महाराज का, और जीत करके जब राज्य की ओर आ रहे थे तो राजदूत जो विराट महाराज के दूत, उन्होंने खबर देते हैं विराट महाराज को कि महाराज आपका उसके पहले अयोध्या जब कर रहे थे तो विराट महाराज बड़े चिंतित थे मेरे पुत्र के अयोध्या के लिए, चिंतित थे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ठीक उसी समय वहां पर युधिष्ठिर महाराज कंक के रूप में छुप करके बैठे थे, कंक थे, तो वो कहने लगे आप चिंता मत कीजिए, जिनका सारथी बृहदनला बने हैं उनका अवश्य जीत होगा, तो आप चिंता नहीं करो। अब ठीक उसी समय विराट महाराज के दूत वहां पर जाकर के संदेश देते हैं कि महाराज आपका पुत्र का जीत हुआ है। हाँ, तो ये सुनकर के बड़े खुशी हो जाते हैं। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मैं बता रहा था ना कि जिसका सारथी बृहदनला है तो उनका पराजय नहीं हो सकता। तो उसके पहले विराट महाराज ने युधिष्ठिर महाराज को सावधान कर दिए थे कि मेरा पुत्र ने जीत करके आए, लेकिन तुम ये बड़े ही कठोर शब्द बोलते हैं, ये नपुंसक को क्यों आप प्रशंसा कर रहे हो। ये अर्जुन उस समय ऐसा, तो आप उसको हमेशा क्यों प्रशंसा कर रहे हो, मैं आपको सावधान कर देता हूँ आगे ऐसा नहीं करना। लेकिन बार बार युधिष्ठिर महाराज अर्जुन की ही प्रशंसा कर रहे थे, जब कर रहे थे तो फिर ये उनका सहन नहीं हुआ, विराट महाराज का सहन नहीं हुआ, वो खेल रहे थे गोटी लेकर के खेल रहे थे, तो उठाए युधिष्ठिर महाराज को मारे। युधिष्ठिर महाराज के मुंह में यहाँ पर लगती है तो तुरंत खून बहने लगती है, और जैसे खून बहने लगती है तो युधिष्ठिर महाराज अपने हाथ दिखा करके खून को रोक लेते हैं, और रोक करके द्रौपदी की ओर देखते हैं, और द्रौपदी एक पात्र ला करके वो खून को खून के नीचे रख देते हैं। ठीक उसी समय जब खून इस प्रकार का चल रही थी, बह रही थी, ठीक उसी समय विराट महाराज का पुत्र उतर अंदर में आते हैं और अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद देखते हैं ये कंक जो पास में बैठे थे तो उनका मुंह से खून निकल रही है, तो उन्होंने पूछे कि पिताश्री ये ब्राह्मण का उनका ऐसा कौन किया। तो विराट महाराज ने बोले बेटा तुम जीत करके आए, लेकिन वो हमेशा आपके साथ जो बृहदनला गया था ना जो ऐसा, तो वो हमेशा उसका ही प्रशंसा कर रहा है। तो वहाँ पर विराट महाराज के पुत्र जो थे तो कहने लगे कि पिताजी आपने बहुत बड़े, हे महाराज आपने बहुत बड़े गलती कर दी है, हाँ ये ब्राह्मण के हिसाब से आपका सारा राज्य नष्ट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप उनको क्षमा मांगिए। तो वहाँ पर उतरने न सॉरी विराट महाराज ने जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज वहाँ पर बोलते हैं कि मैं पहले से ही मैं क्षमा करने की व्रत ले रखा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, यदि मेरा शरीर का खून भूमि में गिरती तो आप क्या, आपका ये सारा राज्य नष्ट भस्म हो जाता। तो युधिष्ठिर महाराज का ये उदार चित्त से, और आज के श्लोकों के एक शब्द है अदोख्य जो चेतस, ये अदोख्य जो चेतस साबित करती है जो भगवान के जो भक्त होते हैं चाहे भले भी उनके ऊपर कितने भी कष्ट आए तो वो कष्ट में वो हिचकते नहीं, कभी हिलते नहीं है, विचलित नहीं होते हैं। और भगवान भी ये बात बताते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, समुद्र जैसे गंभीर होते हैं और शांत होते हैं। अपरियमाण मचड़ प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रभिशन काम कामी, भगवान के भक्त जो होते हैं ये समुद्र के जैसे गंभीर होते हैं। समुद्र में बरसात के समय समुद्र में कितने भी बरसात के जल प्रवेश करें ना क्यों, वो समुद्र वो अपने जो जो किनारा है जो सीमा है वो लांघता नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान के भक्त जानते हैं मर्यादा क्या होती है, चाहे जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए ना वो सीमा लांघते नहीं है। उनके भीतर ऐसे एक भक्ति होती है भगवान के प्रति, वो भक्ति से वो सारे बात समझ जाते हैं, वो अंदर से भगवान ददामी बुद्धि योगम कैसे परिस्थिति में कैसे क्या करना है उनको अंदर से के मिलती है एक इंडिकेशन, एक प्रकार का सूचना, उनको इशारा मिलती रहती है। इसलिए भक्त हर परिस्थिति को कैसे सामना करना है वो जानते हैं। तो और एक बात क्या, हाँ भगवान ये बात को कहते हुए अर्जुन को ये कहे थे भगवद गीता में कि ये संसार की दुख कैसे होती है, ठंडी और गर्मी जैसे, शीतोष्ण सुख दुख दा, ये आएंगे और चले जाएंगे, अर्जुन तुम चिंता नहीं करो, तुम विचलित न हो, ये संसार की जो है आगमा अपायन आएंगे और जाएंगे, आने जाने वाले ये जो है ना संसार की दुख है, ये वो अनित्य है, इसलिए उनको क्या करो, सहन करो, तितिक्षसा सहन करो। ठंडी उष्मा, ठंडी और गर्मी की भांति है, उनमें आप अपने स्थिति से विचलित न हो। लेकिन अगले श्लोक में इसके इस श्लोक के अगले श्लोक पीछे श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि योगी अपोक्को योगी न चितम काम उक्तम। लेकिन जो योगी लोग भगवान के भक्तों के लक्षण ऐसा होती है, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके पिछले श्लोक में बता रहे हैं कि अपोक्को योगी न चितम काम अक्तम। जो लोग पक्के नहीं है भगवान के भक्ति में, बड़े निष्ठा नहीं है जो लोगों का, अपोक्को है, अपोक्को योगी नाम चित्तम काम अक्तम। वो लोग का चित्त कैसे होती है, इंद्र तृप्ति में होता है, और गुण युक्त, इस संसार की विषय इंद्र तृप्ति में विषय वासना में संबंध रखने वाले होते हैं। जो लोग भगवान का भक्ति में पक्के नहीं होते हैं, वो लोग इस संसार के विषय वासना में संबंध रखने से वो हमेशा बेचैन रहते हैं, वो हमेशा अस्थिर रहते हैं, हमेशा प्रोस्ट्रेट जैसे, परेशान जैसे रहते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर यही बात को बता रहे हैं। लेकिन जो भक्त अपना स्थिति को समझ गया और अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करने लगा, तो फिर उनके लिए कोई दुख नहीं है। जब भक्त अपने स्थिति के अनुसार कार्य करने लगता है, वही ही भक्ति है। जब भक्त अपने स्वरूप को समझ जाता है और स्वरूप को समझ करके कार्य करता है, उसको भक्ति कहते हैं। फिर उनके लिए कोई समस्या नहीं रहता है, चाहे वो भारत में रहो पाकिस्तान में रहो, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ये बात को भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारे सिवाय हो जो तो दुख सहित परम सुख। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के कुछ शिष्य लोग बड़े कड़की धूप में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तो एक व्यक्ति देखा और आकर के बोला, महाराज आपके शिष्य लोग को इतने कड़की धूप में क्यों जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, सुबह क्यों नहीं जाते हैं? तब गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोले, तुम्हारा सेवा हो जब तो दुख सहित परम सुख। भगवान की सेवा करते हुए जब कोई दुख कठिनाई आती है, वास्तविक यही हमारा सुख है, यही हमारा आनंद है, यही सबसे बड़ी धन है। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी यही बात को बताना चाहते हैं। आगे जा करके कह रहे हैं आज के तात्पर्य में, जो भक्त लोगों के ऊपर कुछ ऐसे जब अपने विगत दुष्कर्म का परिणाम कुछ दुख आता है, तो भक्त लोग उसको कैसे समझते हैं? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोग कहते हैं कि सारे पराजय को एक भक्त जीवन की सारी पराजय को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है और सारे कष्टों को अपने पूर्व दुष्कर्म का फल मानता है। जब भक्त के जीवन में कुछ कष्ट आता है, वो कैसे वो चीज को कैसे देखता है, ये मेरा कर्म है। अपने जीवन का परेशानी, अपने जीवन के कष्ट को वो दूसरे के ऊपर थोपता नहीं है, वो ये मेरा कर्म है, मेरे कर्म के वजह से मुझे मेरे जीवन में इस प्रकार का कष्ट आ रही है। इसीलिए कुंती महारानी भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं कि तोई में अनन्य विषया मति मधुपते असुरकृत रतिम अदहद वदा गंगा एवं उगम उद्वंती। हे प्रभु, जिस प्रकार का गंगा समुद्र की ओर बहती है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन इधर उधर न जाए, आपके चरण में जाए। क्योंकि ये भक्ति संसार में रहते रहते ये भक्ति संसार के प्रति हमें अनुरक्त हो जाते हैं, कभी कभी आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए कुंती महारानी ये प्रार्थना को गाते हैं, तो ही मैं अनन्य विषया मति, मेरे मति कहाँ जाए ना, आपके चरण में जाए, ये संसार में और नहीं जाए। इस प्रकार का गंगा समुद्र की ओर बहती है। वास्तविक ये संसार की जो एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, वो कैसे है, एक पास है, स्नेह पास। भौतिक जगत में एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, कुंती महारानी कहते हैं ये एक पास के बराबर है, लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन सब बंधे हुए हैं अपने अपने जगह में। ये ऐसे है कि पास है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अपने घरों में, अपने धन में, अपने मित्रों में, अपने संबंधी में, सब अपने अपने स्थिति में बंधे हुए हैं। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं भगवान को छिंदम, उसको तोड़ दो, हाँ उसको तोड़ दो आप। तो ये बात को देख करके हमें समझना चाहिए कि कष्ट तो आएंगे, भौतिक जगत में हमें है तो कष्ट आएंगे, लेकिन हमारा जो जीवन की जो लक्ष्य है, गंतव्य है, उसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बलि महाराज के जीवन में जब आया था भगवान वामन देव, जब उनको सर्वस्व छीन लिए थे और उसके कुल गुरु शुक्राचार्य भी अभिशाप दे दिए थे, वो पूरा एकदम ऐश्वर्य विहीन हुए, उनका तेज घट गया था, वो सर नीचे करके ऐसे खड़े हुए थे। हाँ, और जब देखे उनके महाराज ऐसे असुर महाराज इस प्रकार का स्थिति में खड़े हुए हैं, तो उनके जो सेना थी, हाँ ये कपटी वामन देव, हाँ उसके पर चढ़ाव कर दिए बलि महाराज की जो सेना थी वहाँ पर। तो जब देखें उनके स्वामी का दशा ऐसा है, तो स्वामी का सेवा करने के लिए वो वामन देव के ऊपर चढ़ाव कर दिए। लेकिन बलि महाराज का इच्छा नहीं थी कि भगवान के ऊपर उनके सेना आक्रमण करें, इच्छा न हुई थी, भी जब चढ़ाव किए तो वहाँ पर भगवान विष्णु के जो पार्षद थे वो रोके, वो लोग सुने नहीं, फिर वो लोगों को विष्णु के जो पार्षद थे बध कर दिए। तो फिर बध हो जाने के बाद बलि महाराज भगवान को अपने सर्वस्व प्रदान करते हैं, और वहाँ पर प्रह्लाद महाराज आकर के भगवान को कहते हैं कि उनका भीतर तो सब अच्छे गुण है, हाँ आपका भक्त है, सब कुछ अच्छे गुण है, लेकिन उनके भीतर अहंकार आ गया था दान देने की, मैं इतने बड़े दानी हूँ, ये अहंकार आ गया था, इसके वजह से आप इस प्रकार का शास्ति विधान किए। लेकिन वो आपका भक्ति से विच्युत नहीं हुआ, भक्त कितने भी कठिन परिस्थिति में हो लेकिन भगवान के प्रति जो भक्ति है वो कम नहीं होती है और बढ़ती है। जिस प्रकार के पहाड़ के ऊपर ग्रीष्म के समय ग्रीष्म का हवा चल करके ग्रीष्म का धूल पहाड़ के ऊपर आच्छादित कर देता है और पहाड़ धूल धूल दिखती है, लेकिन बारिश जब होती है बारिश के पानी में वो धूल सब साफ हो जाती है और पहाड़ चिक चिक करने लगती है। ठीक उसी प्रकार भक्त के जीवन में जब कष्ट कठिनाई दुख आती है तो वो कष्ट रूपी बारिश में वो और चिक चिक करने लगता है और उनका भक्ति प्रखर हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। इसीलिए भक्त जो होते हैं कष्ट को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, आओ यही एक दरवाजा है भगवतधाम प्रवेश करने के लिए। कष्ट जो है भक्ति के जीवन में एक गेट है, हाँ ये गेट होकर के हम भगवान को पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में उनके भीतर आत्मा की बल इतने बढ़ चुका था, वो कोई शरीर के स्तर पर इतना काम नहीं हो सकता, कोई भी इंसान शरीर के स्तर पर इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी जो काम किए वो कौन सा आधार के ऊपर काम किए, आत्मा के बल पर। भगवत गीता की बल इतना उनके भीतर बढ़ा हुआ था, तो अमेरिकन लोग स्वीकार किए थे, ये वृद्ध व्यक्ति का आवाज इतना ऐसा था, कब हमारा साइकिल मोड़ करके वो व्यक्ति के सामने आ गया हमको भी पता नहीं चला। तो ये है एक भक्त की स्थिति। तो ये बात को समझ करके आज हमें इतना ही ज्ञान ले सकते हैं, अदोक्ष जो चेतस भगवान में जब हमारा मति पूरा रूप में लग जाती है तब फिर और कोई भय नहीं रहता है उनके लिए। भय कैसे है, न बस सपदम, न संसार कैसे है, न बस सपदम। जब एक भक्त पूरा रूप में भगवान के भक्ति में लग जाता है तो उनको कोई प्रकार का चिंता नहीं रहती है, जो चिंता है सारा संसार को सताती है, मृत्यु रूपी चिंता जो सारा संसार को भयभीत करती है, तो ऐसे भय भी भक्तों को चिंतित नहीं कराता है। तो ये बात के ऊपर हमें यही ज्ञान लेना है आज के श्लोकों से, अदोक्ष जो चेतस, मेरे चेतना लगे रहे कहाँ, ना अदोक्ष में, और हमें देखना है कि हमारा चेतना कहाँ तक और कितने समय भगवान में लगी रहती है। तो वही हिसाब से हमें विचार कर लेना है मुझे कहाँ जाना है, मेरा चेतना अब कहाँ है और कितने लगा हुआ है, हाँ वही समय विचार ले लेना है। हाँ, और विचार लेकर के आगे की तैयारी करने के लिए यहाँ पर भी श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तो इसी में हमें रखेंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट समय है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।